ओम शांति। सेवाओं के जंगल में राह ढूंढता योगी जीवन, एक बार काशी से तीन विद्वान लोग किसी जंगल की यात्रा कर रहे थे। उसमें से एक जो था वो दर्शन शास्त्री था, अर्थात फिलोसोफर, हर चीज में सोचने वाला, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। दूसरा जो था वो वनस्पति शास्त्री था, जिसको वनस्पति, झाड़, पौधे, इन सब का बहुत ज्यादा ज्ञान था। तीसरा जो था वो ध्वनि शास्त्री था, शब्द शास्त्री, वॉइस, साउंड, इसका ज्ञाता। तो तीनों ही रात हो जाती है तो एक जगह, शाम हो जाती है तो एक जगह रुकते हैं, सोचते हैं कुछ खाना बनाया जाए। अब तो तीन अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो जो वनस्पति शास्त्री होता है उसको काम दिया जाता है कि तुम जाकर सब्जी लेकर आओ। जो फिलोसोफर होता है उसको काम दिया जाता है घी लेकर आने का, क्योंकि फिलोसॉफी में ये प्रश्न हमेशा से है कि घी जो है, पात्र उस घी को धारण किए हुए है या घी उस पात्र को धारण किए हुए है, एक ये फिलोसॉफी का प्रश्न है। कंटेनर जो है वो पकड़े हुए है घी को कि घी की वजह से कंटेनर है, ये हमेशा प्रश्न रहा है फिलोसॉफी में। तो उसको ये काम दिया जाता है। तीसरा होता है ध्वनि शास्त्री वाला, आग लगाने का काम उसे दिया जाता है। तो पहला जो होता है वनस्पति शास्त्री, वो जाता है पूरा जंगल छानता है, सोचता है कौन से पत्ते, कौन सी सब्जी ली जाए, परंतु हरेक में दोष देखता है, वात, पित्त, कफ, आयुर्वेद में ये सब है ना, किसी में ये दोष है, किसी में वो दोष है, किसी में ऐसा है, किसी में वो है, और फिर वो अंत में नीम के पत्ते लेके आ जाता है, कहता है ये एक सबसे अच्छा है, इसकी सब्जी सबसे अच्छी बनेगी नीम के, क्योंकि इसमें कोई भी दोष नजर नहीं आ रहा है। दूसरा जो होता है फिलोसोफर, दर्शन शास्त्री, वो जाता है और एक पात्र में घी लेके आता है, पर जब चलते रहता है तब मन में प्रश्न होता है कि शास्त्रों में हमेशा से ही पढ़ा है, ये वाद हमेशा से ही चला है कि घी ने पात्र को धारण किया है या पात्र ने घी को धारण किया है, हु इज होल्डिंग हुम। तो सोचता है क्यों ना एक बार देख लूं क्या होता है। तो वो जो घी का पात्र होता है वो उसको उल्टा कर देता है और सारा घी चलते चलते नीचे गिर जाता है, और उसे बहुत खुशी होती है कि आज मैंने सत्य को जान लिया कि पात्र ही घी को धारण किए हुए है, जो आज तक विवाद था, डिबेट थी, वो आज मुझे समझ में आ गया है। इट इज दी कंटेनर विच इज होल्डिंग दी घी। एक फिलोसॉफिकल प्रश्न है, जो लोग फिलोसॉफी ज्यादा पढ़ते हैं वो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उसमें आते हैं, इस संसार के बारे में, जगत के बारे में, सब कुछ। तीसरा जो होता है ध्वनि शास्त्री, साउंड का ज्ञाता होता है वो, शब्द शास्त्री। तो वो जंगल की बहुत सारी लकड़ियां लेके आता है और चूल्हा जलाता है, आग जलाता है, पर जैसे ही वो गीली लकड़ियां, उनसे एक अजीब सी आवाजें आने लगती है जलती है, तो वो कहता है कि ऐसा आवाज तो किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है ऐसी आवाज का, ये तो बुद्ध अलग अलग आवाज आ रहा है, ऐसे आवाज तो बिल्कुल वर्णन नहीं है, और शास्त्र कहते हैं अपशब्द बिल्कुल सुनने नहीं चाहिए। तो आग तो लगाता है परंतु बाद में आग में पानी डाल के उसे खत्म कर देता है और खुश होता है कि मैंने शास्त्रों की आज्ञा मानी है। तीन लोग हैं खाना बनाने के लिए बैठे हैं। पहला जो आया नीम के पत्ते लेकर आया, जिससे क्या बनेगा, कौन सी सब्जी बनेगी। दूसरा ने घी लाने भेजा था, वो घी गिर गया और आग जो जलाई थी वो भी खत्म हो गई। तीनों भूखे ही रह जाते हैं। आंख कौन सी है और घी कौन सा है और वो सब्जी कौन सी है, क्या कहेंगे? हम भी जब सेवाओं में उतरते हैं, किस लिए उतरते हैं सेवा में? ताकि क्या मिले सेवाओं से? क्या मिलता है? क्या मिलने के लिए? खुशी, शक्ति, कल की मुरली थी ना, डबल फ्रूट, वर्तमान भी और भविष्य भी। हम भी सेवाओं में उतरते हैं किस लिए? ताकि जो ज्ञान और योग हमने धारण किया है, वो कितना धारण किया है वो समझने के लिए। वो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे हॉल है, पेपर है। एक तो है थियोरी, जिसमें हमने सीखा, पढ़ाई की। किस बात की पढ़ाई की? स्विमिंग कैसे करना है। पीएचडी हासिल की, किसमें? हाउ टू स्विम। परंतु पानी में कभी नहीं गए और इसी में हम खुश हो रहे हैं। किसमें? कि हमने स्विमिंग पर किताब भी लिख दी, एक हाउ टू स्विम। उस किताब को अवार्ड भी मिल गया, पर हम कभी पानी में नहीं गए। जब तक उस ज्ञान का प्रैक्टिकल में नहीं लाया जाए, तब तक वो ज्ञान अपूर्ण है। केवल हमने थियोरी समझी है। दो प्रकार के धर्म की चर्चा है। एक है थियोरेटिकल रिलीजन, सैद्धांतिक धर्म, और दूसरा है प्रैक्टिकल रिलीजन, व्यवहारिक धर्म। बाबा ने जिस धर्म को सिखाया है वो है प्रैक्टिकल धर्म। अगर हम सेवा में जा रहे हैं और वो जो आग है वो योग की आग है, वही बुझ जाए तो हम भूखे रहेंगे। वो जो तेल है, वो जो घी है, वो ज्ञान का है। यदि हम सेवाओं में जा रहे हैं और ज्ञान ही बुद्धि से विस्मृत हो जाए, तो वो सेवा खुशी नहीं देगी। वो जो सब्जी है, वनस्पति, वो खुशी है, वो आनंद है। यदि टकराव है तो वो केवल नीम के पत्ते हैं। संघर्ष है सेवाओं में, अनबन है एक दूसरे से, तो सब कुछ करते हुए भी हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमने ये टॉपिक इसीलिए चुना है कि हम देखते हैं सेवा बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी भी है, और हम सब कर भी रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं सेवाओं में ही खो रही है आत्मा, भटक रही है आत्मा। वो तपस्या, वो योग, सब कुछ जैसे डाइल्यूट हो रहा है। तो क्या किया जाए इसके लिए? क्या सेवा बंद कर दिया जाए, बंद कर दी जाए? ये तो नहीं हो सकता। सेवा बंद कर दे तो और ही ज्यादा खतरा है। हमने ऐसी कई सारी आत्माओं को देखा है जिन्होंने कहा कि दादी, अब बस हमको सेवा नहीं करनी है, अब हमको छुट्टी दे दो सेवा से, हम केवल और केवल तपस्या करना चाहते हैं। कोई कोई तो पेशेंट बन चुके हैं, साइकेट्रिक पेशेंट। क्योंकि अगर कोई सोचे मैं केवल ज्ञान और योग करूं और सेवा से दूर हो जाऊं, तो वो जो दिव्यता आनी चाहिए वह नहीं आती है जीवन में। इस सेवा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नहीं हो पाता। आज के मुरली में क्या स्लोगन था? विघ्न क्या करते हैं, क्या करते हैं? बल, बलवान बनाते हैं, बल प्रदान करते हैं। एक सन्यासी था जो 30 साल तक हिमालय में बैठकर वो तपस्या करता था। छोटा था तभी चला गया था, वापस कभी लौट कर नहीं आया। वहीं पर बैठकर तपस्या करता था, शास्त्र पढ़ता था, अपनी कुटिया में रहता था, कभी कभी बाहर थोड़ा सा वहीं आता था, पर लोगों के बीच में नहीं जाता था कभी भी। 30 साल की तपस्या के बाद उसे लगा कि जैसे मैंने सर्व विकारों को जीत लिया है। पढ़ता था शास्त्रों में क्रोध, क्रोध आता है तो क्रोध से ये होता है। उसको बड़ी खुशी थी कि मैंने क्रोध से मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि मैं इतना शांत हूं, क्रोध का तो सवाल ही नहीं। कभी आज तक क्रोध क्या है मुझे पता भी नहीं। इस बात की उसे बहुत आंतरिक खुशी थी कि सर्व विकारों से मैं मुक्त हूं। काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, अहंकार क्या है, कुछ पता ही नहीं। और क्योंकि पर वो सबसे अलग रहता था, किसी से संपर्क में नहीं आता था, अकेला रहता था। एक बार उसने सोचा कई सालों के बाद, क्यों ना एक बार गांव में जाए और देखे क्या करते हैं ये संसारी आत्माएं, कैसे दुखों में डूबी होगी। तो वो देखने के लिए वो गांव में आता है, एक द्वार पर खड़ा रहता है और भिक्षा मांगता है। तो देखता है उस द्वार पर एक छोटा सा बच्चा है और रो रहा है। पहले तो थोड़ी सी आवाज है, तो वो सन्यासी वहां खड़ा रहता है और बच्चा और जोर जोर से रोता है, और जोर जोर से रोता है। वो उसको थोड़ा एक दो बार कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पर जब शांत नहीं हो जाता एकदम क्रोध आ जाता है। एक बार बोला ना चुप हो जाओ, चुप क्यों नहीं होते। बाहर अंदर से उसकी मां आई, कहती है आप तो सन्यासी और इतना क्रोध। उसे एकदम से जागृति आई, अरे मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली और ये क्या हो गया। इसलिए अगर कोई सोचे कि ज्ञान योगी करते रहे सेवा को दूर, तो कर्मातीत बनने की विधि में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कर्म योगी बनना। अव्यक्त तो महावाक्य है बाबा के, बिना कर्म योगी बने तुम कर्मातीत नहीं बन सकते। जैसे अभी भट्टी चल रही है यहां पर, अगर हम सोचे कि रोज ऐसी भट्टी चले, कुछ दिनों के बाद यह भट्टी बोर होने लगेगी, वो सेवा याद आएगी। इसलिए सेवा तो आवश्यक है, परंतु हम आज सेवा का क्या महत्व है इस पर चर्चा नहीं कर रहे, हम कुछ और चर्चा कर रहे हैं कि सेवा का जो इतना विस्तार हो गया है उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान और योग कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है, और उसको कैसे रोके। तो ऐसे पांच अलग अलग तल है सेवा के क्षेत्र में। जब हम जाते हैं उसको विघ्न कहो या भटकाने वाली बातें कहो या आने वाली बाधा कहो, जिसके वजह से ज्ञान योग कम हो जाता है। तो ऐसे हम पांच विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है शारीरिक, दूसरा है बौद्धिक इंटेलेक्चुअल लेवल, तीसरा है भावनात्मक इमोशनल लेवल, चौथा है संस्कारात्मक, संस्कार से संबंधित, और पांचवा है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल रिलेटिंग टू संस्कार, और फिफ्थ स्पिरिचुअल। सेवाएं करते करते सबसे पहला जो एक विघ्न कहो या जो बात आती है जिसकी वजह से ज्ञान योग कम हो जाता है, वो है फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या, सबसे पहले तो अगर कोई बीमारी आ जाए, अगर कोई कमजोरी आ जाए, यदि हमें कहीं सेवा पर भेजा गया और वहां जाकर वो वेदर ही सूट नहीं हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा विघ्न है। हम देखते हैं कई सारे सेवाधारी मधुबन में एक एक मास की सेवा के लिए आते हैं और एक मास में एक हफ्ते के अंदर ही हॉस्पिटल में कि यहां का पानी सूट नहीं हो रहा है, यहां की ठंड सूट नहीं हो रही है, यहां का वेदर कोई ना कोई चीज से एलर्जी हो रही है या कुछ हो रहा है, तो ये जैसे एक विघ्न बन जाता है। चलो ये तो एक फिर भी ठीक है। दूसरा है कमजोरी। हम देखते हैं बहुत सारी बहनें दिन रात सेवा करती रहती है, दिन रात उनको तकलीफ भी बहुत सारी होती है पर कभी कोई डॉक्टर को नहीं दिखाते। ऐसी हमने हर दिन हमारे पास लगभग 20 बहनें आती होंगी ओपीडी में हर दिन टोटल। हम देखते हैं जब उनके ब्लड रिपोर्ट्स तो किसी का हीमोग्लोबिन 6 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है और ये इसी ब्लड रिपोर्ट्स में वो दिन रात सेवा कर रही है। कैसे दिमाग काम करेगा जबकि शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे। कोई ऐसी बहनें आती है जिन्होंने कभी कोई ब्लड चेकअप नहीं किया है और पहली बार करती है। अभी अभी गुजरात की एक बहन आई, उसका थायराइड 80 नॉर्मल 5 होता है। अब 80 में कितने सारे सिम्टम्स होते होंगे, उसने कभी किसी को बताया नहीं पर होते होंगे, कमजोरी, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, बाल झड़ना, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो ये एक जैसे विघ्न है और उसके वजह से उसका डायग्नोस नहीं हो पाता। सुबह भी हमने चर्चा की थी, पहली बात है सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ अकाउंट। अकाउंट करते हैं ना, सुबह की एक पॉइंट रह गई थी मधुबन का, एक मधुबन से आने वाली एक माया रह गई थी ना, अकाउंट्स किसी ने बताई नहीं। तो शरीर में कमजोरी है तो सबसे पहले तो मेडिकल कारण ढूंढो, क्योंकि कमजोरी जब रहेंगी, बहनें हमसे कहती है थोड़ी सी सेवा करती है थकान आ जाती है, थोड़ा सा कहीं गए गीता पाठशाला में कहीं दूर आते हैं तो बस फिर कुछ नहीं कर पाते, इतनी थकान। शायद कुछ ना कुछ शरीर में मेडिकल प्रॉब्लम है, पहले उसको ठीक करना है। एक दूसरा है बीमारी, डिसीज, इलनेस। कई बार हम देखते हैं हमारा दिमाग तेज काम नहीं कर रहा है। कुछ सालों पहले हम जितने एक्टिव थे अभी नहीं रहे, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कोई सूक्ष्म में अंदर ही अंदर बीमारी हो। अभी अभी एक बहन हमारे पास आई राजस्थान से, 6 मास से कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर ठीक नहीं हो रही है, तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कमजोरी लगती है, शाम को बुखार आता है। कभी किसको दिखाया, फिर होम्योपैथी को दिखाया, फिर कुछ दिन दवाई ली, फिर आयुर्वेद को दिखाया, फिर कुछ दिन दवाई ली, फिर किसी और को दिखाया, फिर कुछ दवाई ली। हमारे पास आई, हमने कहा चलो एक एक्सरे करते। एक्सरे किया तो देखा पूरा एक लंग्स में पानी, टैप किया उसको, चेक किया, टीबी था, सिंपल। 6 महीना दवाई दो और उससे मुक्त हो जाओ, आजकल तो इतना आसान हो गया है। पर वो उसके लिए 6 मास तक, और साथ में सेवाएं चल रही है, यहां जाना वहां जाना, खाना बनाना, ये करना, गेस्ट को देखना, दिन रात कर रही है। परंतु ये अनडायग्नोस्ड, अनडिटेक्टेड। कितना टेम्परेचर है तो थर्मामीटर तो है नहीं, लगता है और बाकियों को लगता है ये तो ऐसे ही है। वो भी एक विघ्न रूप बन जाता है। वहां भी क्या हो जाता है, ज्ञान योग कम हो जाता है, वो केवल एक कारोबार रह जाता है, केवल केवल कारोबार। जाना है, गए, मुरली सुनाई, आ गए। पहला है फिजिकल, फिजिकल में कमजोरी, फिजिकल में कोई बीमारी अनडायग्नोस्ड अगर है तुरंत उसका ट्रीटमेंट। और तीसरा है सूट नहीं होता है कई लोगों को, बहुत सारी चीजें, उसके ऊपर तो थोड़ी राय करनी चाहिए क्या किया जाए। तो पहला एक विघ्न जो है वो है फिजिकल सेवाओं में। दूसरा जो है वो है क्या कहा, इंटेलेक्चुअल। ये क्या होता है, बौद्धिक। ये क्या होता है या क्या हो सकता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर विघ्न। यहां पर सुबह भी थोड़ी चर्चा की थी, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, कोई हमसे आगे जा रहा है। किसी की बुद्धि हमसे तेज है, कोई हमसे ज्यादा याद रखता है, किसी का बोलना हमसे अच्छा है, किसी की समझ हमसे अच्छी है, किसी का मुरली सुनाने की स्टाइल अच्छी है, उसके लिए सूक्ष्म में ईर्ष्या उत्पन्न होना, अ सटल जेलसी उस आत्मा के लिए। और सेवा के क्षेत्र में जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, फिर बहुत सारी बातें वहां होती है इंटेलेक्चुअल लेवल पर। वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल है, इंटेलेक्चुअल द्वंद है, एक बौद्धिक स्तर का द्वंद है। एक तो सेंटर है बाहर जो कुमारियां रहती है, स्कूल में ये हो सकता है। हम देखते हैं किसी की हमेशा ही प्रशंसा होती है, कोई हमेशा ही फर्स्ट आता है, हम नहीं आते। कोई भी परीक्षा देता है उसमें आगे जाता है, और हम देते हैं हमारे साथ कुछ नहीं होता है, हम ऐसे वैसे थोड़ा बहुत पास हो जाते हैं बस। कॉलेजों में होता है, क्योंकि हर आत्मा की बुद्धि अपनी अपनी है और हर आत्मा ने अपने आप को ट्रेन किया है। दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक ट्रेंड एक अनट्रेंड। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये मैं नहीं कर सकता। अगर आप ट्रेन करो स्वयं को तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई भी असंभव कार्य नहीं है संसार में। तो इसमें इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाना ये बुद्धि के लेवल का विघ्न है। जैसे सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाना कभी कभी, स्वयं को ही सब कुछ समझना, अच्छा समझना, ये इन्फियोरिटी सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये सब बौद्धिक इंटेलेक्चुअल लेवल के विघ्न है, और सेवाओं में ये सब हो रहा है तो वो सेवा में विघ्न होगा। वो सेवा में सफलता जितनी होनी चाहिए वो नहीं होगी। बहुत सारे हो सकते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल में, ईर्ष्या, द्वेष, फिर ब्लेम गेम। एक और एक है ये गेम, पता है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम क्या होता है, ये बहुत कॉमन गेम है। ये क्या करना, दूसरों को दोषी ठहराना हर चीज के लिए, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ऐसा किया, ब्लेम गेम। एक दूसरे पर उंगली दिखाना, फिंगर पॉइंटिंग, फॉल्ट फाइंडिंग एंड फिंगर पॉइंटिंग, दूसरों के दोष देखना और क्रिटिसाइज करना किसको, और उसके विरोध में भी एक दूसरी बीमारी है। ये सब इंटेलेक्चुअल लेवल की बीमारियां हैं। एक दूसरी बीमारी है सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सुना है इसके बारे में, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, स्वयं को दोषी ठहराना हर चीज में, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं मेरी वजह से सेवा में ये हुई असफलता हुई, इतना स्वयं को टोकना, दोष देना हद से ज्यादा। ये भी हमने देखा है कई आत्माओं में अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस होता है, उससे मुक्ति ही नहीं हो पाती है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, पश्चाताप कर लिया, प्रायश्चित कर लिया, अभी अभी साकार मुरली में प्रश्न भी था प्रायश्चित का, एक बार कर दिया बस, अब रोज 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 पश्चाताप थोड़ी ना करना होता है, उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। तो ये भी एक संस्कार बन गया है सेल्फ विक्टिमाइजेशन का, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, ब्लेम गेम का, क्रिटिसिज्म का, क्रिटिसाइज करना दूसरों को, चाहे किसने कुछ भी किया क्रिटिसाइज करना आदत पड़ गई है क्रिटिसिज्म। ये सब इंटेलेक्चुअल लेवल के विघ्न है। अगले है भावनात्मक, इमोशनल लेवल के। सुबह इसकी चर्चा की थी, किसी ने कुछ बोल दिया दुखी, उदास, नाराज, सेंसिटिव नेचर, ओवर थिंकिंग नेचर, एक दूसरा नेचर है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग अर्थात सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते ही रहना। हमको किसी ने आज कुछ शाम को कह दिया, हम रात भर सोचते रहे ऐसा उसने क्यों कहा, क्यों कहा। दूसरे दिन वो मिला, उसने कहा मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। अरे पर हमारी नींद गई ना, वो तो कह के चला गया और सो गया, और हम रात भर सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। दिस इज नोन एज ओवर थिंकिंग नेचर, ओवर सेंसिटिव नेचर और ओवर थिंकिंग नेचर, दो प्रकार के नेचर इस कैटेगरी के साइकोलॉजी में बताए हैं। एक बात हो गई पर उसको छोड़ ही नहीं रहे, बस सोच ही रहे उसके बारे में। एक दिन, एक मास हो गया, एक साल हो गया, दस साल हो गया, उसी की चर्चा, उसी का सोच, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था, इसने मेरे को ऐसा बोला था। वो आत्मा भी बदल चुकी है, उसने अपने अंदर परिवर्तन ला लिया है, पर हमने जो फिक्स्ड आइडियाज है उसको पकड़ के रखा है। इमोशनल लेवल के विघ्न, भावना, एक होता है अति संवेदनशील होना जिसकी सुबह चर्चा की थी, दूसरा है संवेदनाहीन हो जाना। दूसरों को हमारे वजह से कितना भी दुख हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, यह भी नहीं चाहिए। दूसरों को डिस्टर्ब करते रहो परंतु हम अप्रभावित रहे, जहां जाएंगे एक दो को अपने शब्दों से घायल करके ही आएंगे। जब तक एक दो घायल नहीं करते चैन नहीं मिलता है। जगदीश भाई एक कहानी सुनाते ना, एक माता है, एक स्त्री है, एक गांव में जो जाता है हर एक से झगड़ा करती है, जिसको जो मिलता है उससे झगड़ा करती है, हर दिन झगड़ा करती है, बिना कारण के झगड़ा करती है। एक दिन गांव वाले सारे सोचते हैं इससे हम बात ही नहीं करेंगे, करने तो इसको जो करना है करने दो, हम इससे बात ही नहीं करेंगे। तो जब वो उठती है और हर एक से जाके झगड़ा करने की कोशिश करती है, कोई बात नहीं करती, तो क्या करेंगे वो, उसकी जो प्यास है झगड़ा करने की कैसी तृप्त होगी। तो कुएं में जाती है, अपनी परछाई को देखती है और उससे झगड़ा करने लगती है। भावनात्मक अर्थात एक नेचर होता है डिस्टर्बिंग नेचर, दूसरों को डिस्टर्ब करना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों को टॉर्चर करना और खुशी का अनुभव करना। साइकेट्री में, साइकोलॉजी में इसे सैडिज्म कहा जाता है, सैडिस्टिक प्लेजर्स, दूसरों को दुख देने के बाद प्राप्त हुआ सुख, इसको कहा जाता है सैडिस्टिक प्लेजर्स। तानाशाह जो इस तरह के लोग थे विश्व भर में, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, दूसरों को मारते थे और खुशी होती थी। लियो टॉलस्टॉय ने एक जगह लिखा है, काल्पनिक कहानी लिखी है कि मैं जा रहा था खेत में और खेत में देखा वो झूठा आदमी, ऐसा होता है ना, टोपी पहने हुए, तो मैंने उससे बातें करना चालू की और उससे बात की और उससे पूछा कि तुम यहां खड़े खड़े बोर नहीं हो जाते, अकेले खेत में खड़े रहते हो, टोपी पहने हुए, हाथ फैलाए हुए, दिन रात, दिन भर खड़े रहते हो, रात में खड़े रहते हो, बोर नहीं होता है। वो कहता है नहीं, मुझे मजा आता है पक्षियों को भगाने में, मुझे मजा आता है, अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगना है, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, किसी को दर्द देना, दुख देना, मेंटल टॉर्चर करना, डिस्टर्बिंग नेचर, इससे भी मुक्त होना है। ये सेवा में बहुत बड़ा विघ्न है। हम तो चलो निश्चिंत है, दूसरों को दुख दे दिया हमें कोई परवाह ही नहीं, खाना खाया नहीं खाया, कोई बीमार है, जिंदा है, मर गया, कोई चिंता नहीं। परंतु बाबा ने यह भी तो नहीं सिखाया। अति संवेदनशील नहीं होना है, परंतु संवेदनाहीन भी नहीं हो जाना है। तो तीसरा है इमोशनल, फोर्थ है क्या बताएं, संस्कारात्मक, संस्कारों में टक्कर, संस्कारों में टकराव, हद के संस्कार। अगर वो है तो मैं उनकी उसके साथ सेवा नहीं कर सकती, पहले ही वो वहां से जाए तो मैं जाऊं, उसके साथ नहीं कर सकती। फिक्स्ड आइडियाज है, और एक संस्कार दूसरे संस्कार से जब टकराता है तो क्या होता है, आग, संघर्ष, सेवा नष्ट। खुशी होती है क्या? अगर किसी से झगड़ा हो गया, शाम को योग में बैठो, योग लगता है, वही आत्मा आती है, याद करेंगे बाप को, आएगी वो आत्मा, लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, घृणा। एक है घृणा, दूसरा है लगाव झुकाव। संघर्ष, टकराव, स्ट्रगल, डिस्प्यूट, डिबेट, आर्ग्यूमेंट, ऑफिस में, घर में, चाहे सेंटर में, स्कूल में या कॉलेज में, आपसी हमारे जो संबंध हो उसमें मिठास हो, और उसके लिए झुकना पड़ेगा। अकड़कर अगर हम खड़े रहे, अक्टूबर 2010 डबल विदेशियों से मुलाकात, अव्यक्त महावाक्य, माया के दो स्वरूप, एक है व्यर्थ संकल्प और दूसरा है मैं राइट हूं, दूसरा है मैं राइट हूं। पहले मानो कि तुम गलत हो, उसके बाद ही आगे की चर्चा करेंगे, तब तक नो डिस्कशन। पहले मानो कि तुम गलत हो, पहले माफी मांगो, उसके बाद ही नेक्स्ट डिस्कशन, तब तक कोई डिस्कशन नहीं करना है तुम्हारे साथ। मैं राइट हूं की माया, हरेक के अपने संस्कार है, और कितना समय लगाया है एक संस्कार बनने में, और हम चाहते हैं कि वो संस्कार तुरंत चेंज हो जाए, वो क्योंकि वो संस्कार हम में नहीं है, तो हम दूसरे में देख रहे हैं और हमको लगता है ये चेंज क्यों नहीं करता है वो संस्कार। जैसे वो अपना संस्कार नहीं चेंज कर पा रहा है, ऐसा हम में भी तो कोई संस्कार होगा जो नहीं जा रहा है, हम में भी तो कोई दूसरी तरफ से कोई दूसरा एक ऐसा संस्कार होगा जो इतना कड़ा है, जो इतने साल से हम कोशिश कर रहे पर जा नहीं रहा है। आज दोपहर में हमें एक फोन आया एक भाई का, वो कह रहा था कि हम क्या बताएं, हम इतना सेंटर पर जाते हैं, इतना ज्ञान योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक आदत नहीं छूट रही है, सब कुछ कर लिया दारू पीने की, क्या करें, सब कुछ कर रहे हैं, अमृत वेला भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, सारी धारणाएं हैं, पवित्रता की धारणा है, पर ये जो आदत है पुरानी वो नहीं छूट रही है, अब उसके लिए कुछ कहो। और हम उसको देख के करें, देगा, अरे तुम ऐसे कैसे, छोड़ो इसको, हमको गुस्सा आएगा उसके ऊपर। अरे पर हमारी भी तो उसकी वो आदत है, तो हमारी कोई दूसरी होगी, हमारी चिड़चिड़ेपन की होगी, वो भी तो नहीं जा रही है, उसकी वो नहीं जा रही, हमारी ये नहीं जा रही, पर हमारा गुस्सा उसके तरफ बहुत ज्यादा है। संस्कार सूक्ष्म है, उनको भी अवसर देना है, चांस देना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ टॉलरेट करना है उनके संस्कारों को। तो वो एक है संस्कारात्मक विघ्न सेवाओं में, जहां पर योग नष्ट, ज्ञान खत्म ऐसा हो जाता है। और अंतिम जो है वो है आध्यात्मिक, ये क्या होता है, सेवाओं में आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं, परंतु ये विस्मृत हो गए किसकी सेवा है, सेवा कर रहे हैं परंतु त्याग खत्म हो गया उस सेवा में, सेवा कर रहे हैं परंतु तपस्या नष्ट हो गई उस सेवा की, सेवा कर रहे परंतु वैराग की जगह राग उत्पन्न हो गया है, सेवा कर रहे परंतु यह विस्मृति हो रही कि करा वो रहा है, करण करावनहार वो है, हम केवल निमित्त है। सुबह भी कहा था वो चाहे तो हमारी जगह किसी और को रख सकता है, उसका कार्य है, हमको रखा ये भाग्य है। आध्यात्मिक विघ्न यह जो निमित्त भाव है इसको कूट कूट के अंदर भरना है, सबको यह काम करना है। इंस्ट्रूमेंट वाली जो फीलिंग है यह मेहनत का काम है। ब्रह्मा बाबा से अमृत वेला चार वरदान लेने हैं रोज। जब अमृत वेला सूक्ष्म वतन में जाओ, जो योग करते उसमें ये एक इंक्लूड कर सकते हैं, जो बाबा में वो सारी चार विशेषताएं थी। एक निरंकारी भव, कि हम सब कुछ करें परंतु अहंकार ना आए। दूसरा निमित्त भव, तीसरा निर्माण भव, और चौथा चौथा इससे संबंधित जी नहीं, नहीं वो विघ्न वाली बात नहीं, हम अहंकार से संबंधित बात कर रहे हैं। निर्माण निर्माण भव, मान की कोई चाह नहीं। निर्माण भव, निमित्त भव, नम्रचित्त भव और निरंकारी भव। सबसे बड़ा विघ्न जो है ज्ञानी का अहंकार है। ऐसा कहते हैं कि अज्ञान भटकाता है, इसको लिख के रख सकते हैं सभी। अज्ञान जो है वो भटकाता है, अज्ञान जो है अंधकार है, परंतु ज्ञान महाअंधकार है। यदि उस ज्ञान का ही अहंकार आ जाए तो अज्ञान तो भटकाता है, अज्ञान तो अंधकार है, हमें पता है, हम अज्ञान को अंधकार कहते हैं, परंतु ज्ञान महाअंधकार है। यदि उसमें मैं आ गया, मैं ये करता हूं, ये जानता हूं, ये मुझ में विशेषता है, अरे भरी किसने, वो निमित्त भाव अपने में कूट कूट के भरना है। एक बहुत सुंदर स्टोरी है जिसमें एक भक्त होता है राम का, वो दिन रात राम की ही एक ही बात करते रहता है, राम की इच्छा से, राम की इच्छा से। वो जुलाया होता है, वो जुलाह होता है ना कपड़े बुनने वाला, तो मार्केट में जाता है, कोई उसको पूछता है इसका क्या दाम है, तो वो बता देता है कि राम की इच्छा से इसको मैंने इतने रुपए में खरीदा, राम की इच्छा से इतनी इसमें मेहनत लगी और राम की इच्छा से मैं इतने रुपए में तुम्हें बेच रहा हूं। एक बार वो घर आता है, भोजन करता है, वरांडे में बैठा रहता है, तो वहां दिखा है डाकुओं की एक टोली आती है। डाकुओं को लगता है ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, हम जो अभी खजाना लूटने वाले इसके ऊपर लादने के लिए बहुत अच्छा है, तो उसको पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। तो वो सारे डाकू जो होते हैं राजमहल में डाका डालते हैं, सारा खजाना लूटते हैं, सारा थैली में भरते हैं दो तीन, और इसके सिर के ऊपर पीठ के ऊपर रखते हैं, और जैसे जाने लगते हैं सिपाही वहां से आ जाते हैं, तो सारे डाकू भाग के चले जाते हैं, और बेचारा ये जो भोला भाला व्यक्ति होता है, भगत होता है, उसको सैनिक पकड़ लेते हैं और उसको दूसरे दिन राजा के सम्मुख उपस्थित करते हैं। उस गांव के लोग आ जाते हैं ये कहने के लिए कि ये बहुत भोला व्यक्ति है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकता है चोरी, परंतु वो तो पकड़े गए रंगे हाथों। तो राजा उसको पूछता है बताओ तुम्हें क्या कहना है तुम्हारी सफाई में, तो वो जो कहता है बहुत सुंदर है। वो कहता है राम की इच्छा से सारे दिन भर मैं अपने दुकान में था, फिर राम की इच्छा से मैं घर आया, फिर राम की इच्छा से मैं वरांडे में बैठा था, फिर राम की ही इच्छा से वहां पर कुछ डाकू आ गए, और श्री राम की ही इच्छा थी कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और फिर पकड़ के वो मुझे अपने साथ ले गए और राम की इच्छा से फिर उन्होंने ढाका डाला, सारा खजाना लूटा और राम की इच्छा से मेरे सिर के ऊपर पीठ के ऊपर रखा और राम की इच्छा से वहां पर सिपाही आ गए और हुजूर राम की इच्छा से सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और राम की इच्छा से रात भर मुझे जेल में रखा और एट लास्ट राम की इच्छा से मैं अभी आपके सम्मुख खड़ा हूं। तो वकील राजा सोचता है ऐसा व्यक्ति कोई चोरी कर सकता है क्या, इतना भोलापन, इतनी अटूट श्रद्धा, अटूट निश्चय कि सब कुछ जो करा रहा है भक्ति में तो वही होता है। फिर राजा कहता है इसे छोड़ दो, ये चोर नहीं है, तो उसे छोड़ देते हैं। तो वो जो गांव वाले उसे लेने आते उनके साथ जाता है और कहता है देखा राम की इच्छा से राजा ने मुझे छोड़ दिया। एक भगत कितना अटूट निश्चय है उसको कि जो पट वो उत्सुकता उत्कंठा रहती है कि आगे कुछ तो है अच्छा। हम ये नहीं कह रहे सीरियल खराब है, परंतु एक्साइटमेंट है आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट, और वो हो गया तो उसके आगे क्या, बराबर वो टाइम जैसे आता है फिर मन नहीं लगता है और चीजों में, वही देखना है। और कितना टाइम चला जाता है उस सीरियल्स में, उन सब बातों में। छोटी कन्याएं देखती है, देखती तो होगी थोड़ा थोड़ा। नॉलेज के लिए, अच्छा चलो ठीक है। हाँ सच बोल रही है, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। परंतु वो जो कुछ भी उसमें दिखाया जाता है, एक और सूक्ष्म बात है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सत्य में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारी बातें काल्पनिक होती है उसमें, बहुत सारी बातें एडिशन होती है उसमें, बहुत सारी बातें इधर उधर की मिर्च मसाला डालकर बहुत अच्छा उसको चटपटा बनाकर परोसा जाता है, नहीं तो चलेगा कैसे। रामायण किसको पता नहीं, फिर भी तो नए नए रामायण आते रहते हैं और उसको मजेदार बनाया जाता है। और एक दूसरी बात, हम सोचते हैं ये बहुत अच्छा सीरियल है, धार्मिक सीरियल है, रिलीजियस मूवीज, रिलीजियस सीरियल्स, परंतु जो एक्टर काम कर रहा है उसका स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, उसका स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है, क्या वो विश्व कल्याण के लिए काम कर रहा है, भावना क्या है उसकी, काम करने के पीछे उद्देश्य कमर्शियल है। वो अभी अभी श्री राम बना है, दूसरे इसमें शायद विलन भी बन सकता है, वो देख के दुख भी होगा फिर माताओं को। किसी एक सीरियल में, कोई एक पिक्चर या मूवी में कोई कृष्ण बनाता, एक बहन इतना दीवानी हो गई उसकी, इतना दीवानी हो गई कि सारा घर परिवार छोड़कर मुंबई चली गई कि वही भगवान है जैसे, और देखा तो वो पार्टी में डांस और सिगरेट वगैरह सब चालू था। स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है वो लोगों का, वो जो एक्टर्स है उनका इंटरनल लाइफ देखो क्या है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, डर है, एक एक्टर को दूसरे एक्टर का डर। एक अमेरिकन एक्टर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, उसमें लिखा है कि मैंने अपने जीवन में इतने पार्ट बजाए हैं, कभी ये खेला, कभी विलन, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे ये लग रहा है मैं हूं कौन, मैं खुद ही खोया हुआ हूं, इन सब में से मैं कौन हूं, ये सत्य है या वो सत्य है, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो डिजिटल में सबसे पहली माया जो है वो है टीवी, और उसमें जो दिखाते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। दूसरा, हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, इतने सारे चैनल्स, एक चैनल बस रिमोट कंट्रोल दबा रहे हैं, एक बटन दूसरा बटन, इससे मन कितना चंचल है वो भी नजर आ रहा है। कहीं पर एक पांच मिनट भी नहीं देख सकते, देखा चेंज अभी भी। और नाम क्या कहते हैं हम, पीस ऑफ माइंड। क्या देख रहे हैं, पीस ऑफ माइंड। कितना देर देखा पीस ऑफ माइंड, 10 मिनट, तुरंत चैनल चेंज, कुछ दूसरा आ गया, तुरंत चैनल चेंज। मन आंखों के सामने कितना कुछ जा रहा है, एक घंटे में इतना कुछ चला गया कि हाथ में कुछ भी नहीं है। एनर्जी को खींच रहा है, आंखों के द्वारा हमारी एनर्जी को वो खींच रहा है। ये ऊर्जा हमें ज्ञान और योग में लगानी है, ये ब्रह्मचर्य की साधना है, तपस्या है, और वो सारी ऊर्जा उधर खींची जा रही है। तो पहला है टीवी, दूसरा है मोबाइल। रावण ने जब देखा कि ये जो बीके लोग हैं, ये बिल्कुल सिनेमा घर में नहीं जाते, तो उसने एक चाल चली। क्या कर दिया उसने, सबसे पहले तो टीवी ला लिया सबके घर में। ये लोग सिनेमा घर में नहीं जाते, थिएटर में नहीं जाते, मल्टीप्लेक्स में ये दूर रहते हैं। उसको बहुत तकलीफ हुई, वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग। तो उसने चाल चली, टीवी को रख दिया घर पे। जब उसे पता चला कि कुछ कुछ पक्के बीके ऐसे हैं कि जो टीवी भी नहीं देखते, और कई कई उन्हें अपना टीवी बेच दिया है, पहले था ज्ञान में आते ही बेच दिया, ऐसे भी है बहुत सारे। तो उसने अपडेटेड चाल चली एक उसके आगे की, वो है जेब में ही टीवी डाल दिया। मोबाइल का उद्देश्य सेवा बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत सेवाओं का विस्तार हो सकता है, कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा हो सकता है, परंतु उसमें माया भी है। उसी मोबाइल में माया भरी हुई है, आग की तरह है। खाना बनाना है तो खाना बना सकते हो, घर भी जला सकता है। उसका काम एक ही है, बात करना और मैसेज करना, पर उस बात करने में भी वो बात करना 5 मिनट की जगह आधा घंटा भी हो सकता है। फिर उसमें पैसे, एनर्जी, शेयरिंग एक दूसरे से, फैमिलियरिटी, संबंध संपर्क का बढ़ना, वो सब हो सकता है। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, और उसमें कब विकार आ जाए ये बताया नहीं जा सकता है। फिर किसी ने लिखा है, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप मोर ऑफन देन नॉट टर्न्स इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप। कब उसमें विकार आ जाए, कब आकर्षण उत्पन्न हो जाए, वो बताया नहीं जा सकता है। उसकी कोई तिथि तारीख नहीं है, वो खींचता है, फिर वही व्यक्ति अच्छा लगता है, फिर उसी के साथ सब कुछ शेयर करना है, फिर बाबा के साथ शेयर करना कम हो जाता है। मनुष्यों से शेयर अधिक करोगे तो ऊपर शेयरिंग कम हो जाएगा, फिर आधार, फिर सपोर्ट, सहारा, जीवन में समस्या उलझन आएगी तो उसी के पास जाएंगे, उसका नंबर है, घंटों बातें करना, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, प्राइवेट डील्स, प्राइवेट मीटिंग्स, ये सब चालू हो जाता है। कहां मैत्री स्थापन हो जाती है और वो मैत्री कहां से कहां ले जाती है। ज्ञान योग एक तरफ, नाम ऊपर से सेवा का, अंदर से ऊपर से प्रेम, ऊपर से सेवा, अंदर से वासना। इससे, इसके लिए जितना जिससे बात करना है बस कर ली बात, काम खत्म। 3 मिनट से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई सेवा का समाचार है, सेवा से संबंधित है, कोई प्लानिंग है, कोई प्रोग्राम है तो ठीक है, अन्यथा 3 मिनट्स, दैट्स इट। वो भी टाइम वेस्ट है। समय जा रहा है, संकल्प जा रहा है, शक्ति जा रही है, पैसा जा रहा है, चारों ही चीजें जा रही है, डिपेंडेंसी आ रही है। वही व्यक्ति चाहिए, बात करने को चाहिए कोई ना कोई, और फिर श्रीमत का भी उल्लंघन होगा, फिर वो टाइम नहीं रहेगा उसमें कि 10 बजे तक ही बात करना है, फिर रात को 12 भी बज सकते हैं, 1 भी बज सकता है, बात करते करते करते। फिर उसमें छिपाना भी हो सकता है, और मोबाइल अगर किसी और के हाथ में चला गया तो डर। तो तीसरा है मोबाइल, और उससे भी बड़ी माया है फिर चौथी, वो है अंतरजाल, इंटर नेट, नेट अर्थात जाल। इंटरनेट बहुत बड़ा अच्छा साधन है सेवाओं का, परंतु वही इंटरनेट नरक का भी द्वार है। एक क्लिक और ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी, एक क्लिक। व्हाट्सएप ये उसका सबसे नवीनतम रूप है। वार्तालाप चालू है उसके ऊपर, जिसका कोई अर्थ नहीं। हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सद्गुरुवार। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रीड, मस्ट सी, वेरी इंटरेस्टिंग। चालू है, भेज रहे हैं एक दूसरे को, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका ज्ञान योग से कोई संबंध नहीं है, जिससे वेस्ट हो रहा है समय, एनर्जी, सब कुछ, और बस भेज रहे हैं। नाम सेवा, ऊपर से नाम हर चीज का सेवा ही देते हैं। ब्राह्मणों की भाषा अलौकिक होती है ना, सेवार्थ। बहुत अच्छी क्लास है, जरूर सुनना। तुमने सुनी क्या? फॉरवर्ड करने का अधिकार उसी को है जिसने खुद उसको धारण किया है। तब तक बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं करना कुछ। यहां तो फॉरवर्डिंग बिजनेस चालू है, बस मेल इधर से आगे भेजा, उधर से आगे, उधर से आगे, वो क्लास घूम रही है ऐसी, बेचारी अनाथ। सुपर्ब क्लास, सुनी क्या? वो भी माया ही है। उसमें कॉन्टैक्ट्स, उसमें रिलेशनशिप्स, उसमें फैमिलियरिटी, उसमें वार्तालाप, नॉन कम्युनिक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, NVC, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इमोटिकॉन्स, वो इमोजीज जो होते हैं ना, छोटे छोटे चित्र, हंसता हुआ, रोता हुआ, गुस्से वाला, स्माइल करता हुआ, उसमें ही कितना चालू है, बस उसी से चालू ही चालू है, चालू ही चालू है, चालू ही चालू है। उसी से झगड़े भी होते हैं, बिना बात किए, बिना टाइप किए, बिना कुछ किए ही झगड़े। हमने भेजा, अभी तक कोई उत्तर नहीं आया, आजा, आएगा, 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 आजा, आजा, आजा। हमने मैसेज कर दिया है पर कुछ आया नहीं। हमने अपना फोटो पोस्ट कर दिया है, सेल्फी, अभी तक कोई कमेंट्स नहीं। बहुत अच्छा है, सुपर, वेरी गुड, कुछ भी नहीं आया अभी तक। आएगा, आएगा, आएगा। अमृत वेला तीन बजे उठते ही सबसे पहले देखना किसी ने कुछ भेजा क्या, रात में पिक्चर पोस्ट किया था पर अभी तक कुछ आया ही नहीं, मैं कैसे दिखता हूं और दिखती हूं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं अभी तक उसमें। आएगा आएगा आएगा, आजा आजा, सतत प्रतीक्षा, अपलक लोचन। किसी ने एक चित्र भेजा था हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर का, पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ है और एनेस्थेटिस्ट जो है उसने पोस्ट कर दिया है ग्रुप में कि ये डिफिकल्ट केस है, कौन सा एनेस्थीसिया देना चाहिए, स्पाइनल देना चाहिए, पूरा जीए देना चाहिए, जनरल एनेस्थीसिया देना चाहिए, लोकल देना चाहिए, और वो वेट कर रहा है ऐसे, और डॉक्टर सो गया, बाकी हॉस्पिटल का जो ओटी स्टाफ है कोई इधर सोया है कोई उधर सोया है, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ उत्तर भेजा ही नहीं है पोस्ट पे ग्रुप में, पोस्ट तो कर दिया है ग्रुप में कि कौन सा एनेस्थीसिया देना है और पेशेंट चिल्ला रहा है जोर जोर से टेबल पर, पोस्ट किया है उत्तर अभी तक आया नहीं है ग्रुप में, अभी तक किसी ने कोई ग्रुप। हाँ ये एक दूसरी माया है, नए नए ग्रुप, इधर का ग्रुप उधर का ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, दिव्य दर्शन ग्रुप, दिव्य ज्योति ग्रुप, ऐसे ही सारे नाम है उसके। तो ग्रुप्स, सेल्फी, डीपी, स्टेटस, कुछ भी रहा पोस्ट, हर चीज पोस्ट करो, मैं अभी यहां हूं पोस्ट, हम यहां आए हैं, दुनिया को पता रहे कि मैं अभी इस समय कहां हूं, आज हम कहां घूमने गए थे ये वहां की फोटो है, ये किसको पता रहना चाहिए, सारे विश्व को पता हो, इसका ज्ञान और योग से क्या संबंध है। जो बातें हम कह रहे हैं किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ये सब गलत है, ऐसा थोड़ी होता है, इलॉजिकल बातें हैं सब, ऐसा तो नहीं लग रहा, ये तो जरूरी है, और ये कहां से आ गया नया ज्ञान। स्वयं को चेक करो, स्वयं डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, लोग डिटॉक्स करने जाते हैं, नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं ना, चार चार दिन छह छह दिन, उसको डिटॉक्स सेंटर कहा जाता है, सारे टॉक्सिन्स जो है वो निकल बाहर करते हैं, उसी तरह क्या करना है डिजिटल डिटॉक्स, बीच बीच में जरूरी नहीं है 8 बजे के बाद, जहां जरूरी है बस वहीं रखो उसको, फिर इंटरनेट का उपयोग जितना करना है, पर्पजलेस सर्फिंग ये एक दूसरी माया है, बिना कोई लक्ष्य के नेट पर बैठ जाना और क्लिक करते जाना एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद कोई उसका अर्थ नहीं है, बस ढूंढ रहे हैं एक के बाद एक, क्या ढूंढ रहे हैं पता ही नहीं। एक होता है कोई टॉपिक है जिसके हम, जिस पर हमको बाबा ने कोई बात कही है जिसको हमें ढूंढना है, एक वो सर्फिंग है कि ये क्या है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, मुरलियों में कई कई शब्द आते हैं, इंश्योरेंस मैग्नेट सुना होगा ये शब्द, क्या है ये, कुछ है क्या इसके बारे में, वो आप ढूंढ सकते हो। चौप चीनी, बाप तुम्हें चौप चीनी खिलाते हैं, ये चौप चीनी क्या होता है, कहीं सोर्स नहीं है, नेट पर ही ढूंढना पड़ेगा। तिरकमबाजी, इसका अर्थ कहां से ढूंढेंगे आप, कुछ कुछ दूसरी दूसरी भाषाओं के शब्द है और कहीं मिलते नहीं है, किससे पूछे, जिसको पूछे उसको भी नहीं पता, कुछ कुछ बातें ढूंढनी पड़ेगी, वो पर्पसफुल है। एक होता है पर्पसलेस सर्फिंग, घंटों इंटरनेट पर बैठे हुए कोई उसका अर्थ नहीं है, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप लगे हुए है बस उसके ऊपर, कुछ ना कुछ भेज ही रहे, ये सब माया के रूप है। सेवाएं तो है, परंतु सेवाओं में ये सब विघ्न बन जाते हैं। इसमें एक अहंकार की भी तृप्ति होती है, हमने ये सेवा की, हम ये दिखाना चाहते हैं दूसरों को, इमोशनल अत्याचार, हमने ये सेवा की, ये 10 फोटो है भेज दिया, देखो ये हमारी सेवा है। सुबह भी कल भी कहा था, मम्मा 3 मास के लिए बेंगलोर गई, मम्मा का मास है, 3 मास के लिए मम्मा बेंगलोर थी, बहुत सारी सेवाएं की, बेंगलोर से वापस आई, मम्मा से पूछा गया, मम्मा सेवा कैसी थी, सेवा बताओ, मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस, कोई वर्णन नहीं, कोई विस्तार नहीं, सेवाएं कैसी थी, अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस। तो सेवाओं के इस जंगल में कहीं हम खो ना जाए, जिस लिए आए थे वो ना खो जाए। सबसे पहला बताया शारीरिक, दूसरा बताया बौद्धिक, तीसरा बताया भावनात्मक, भावनात्मक कृति से स्वयं को स्ट्रांग बनाना है, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में हो, इमोशनल कंट्रोल, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना हो, वो इधर से दबाए खुश तो हम खुश, वो इधर से दबाए दुखी तो हम दुखी, वो उधर से दबाए उदास तो हम उदास। हमारा रिमोट कहां रखना है, पॉकेट में, अपनी पॉकेट नहीं है तो पर्स तो है, अपनी पर्स में, ठीक है। चौथा संस्कारात्मक, स्वयं के संस्कारों को स्टडी करना है कि मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन से संस्कार करते हैं, मेरे अपने, मेरे अंदर ऐसा कौन सा वो संस्कार है कि वो प्रकट होते ही सारा ज्ञान योग खत्म, एक पल के लिए आता है वो बाहर और सब कुछ नष्ट कर देता है, और फिर उसको ठीक करने में अगले 10 दिन लगते हैं। वो कौन सा एक संस्कार है मेरे अंदर जिस पर मुझे काम करना है। फिर है आध्यात्मिक, जिसमें वैराग नहीं, तप नहीं, जिसमें निमित्त भाव ही खत्म हो गया है, फिर लग रहा है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मुझे ही जैसे सब कुछ करना है। दादी जान की लंदन गई थी बहुत पहले, जब बहुत विस्तार नहीं हुआ था, सभी बहनों ने कहा था हम बैठकर नई जगह जो लेनी है उसके लिए योग कर रहे हैं, नई जगह नहीं मिल रही है, दादी ने कहा था क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, जगह नहीं मिल रही है, मिलेगी जब मिलनी है, अब अपना तपस्या योग करो, उसके लिए नहीं, बाबा से कनेक्शन जोड़ते रहो, वो कोई जगह दे दे, जगह दे दे, जगह दे दे, जगह दे दे, जब उसको बनाना हो उसका घर उस स्थान पर वो बनाएगा, उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है, एक घर नहीं बन रहा है, सेंटर नहीं बन रहा है, सेंटर नहीं बन रहा है, सेंटर नहीं बन रहा है, जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है, जगह और फिर सेंटर, और बन गया तो अभी बड़ा करना है उसको, बड़ा करना है तो और बड़ा करना है, उसी के बारे में सोच रहे हैं दिन रात, ये भूल ही गए कि किसका काम है, वो भी है, बाबा भी है, ये भूल गया था। और सबसे लास्ट है डिजिटल, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल माया, माया ने अपना रूप डिजिटल बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक माया, कितना टाइम हमारा व्हाट्सएप, कितना टाइम हमारा फेसबुक और सोशल मीडिया और इन सब में जा रहा है, उसकी चेकिंग करनी है, और जो अनावश्यक है कट कर दो उसको, सीधा खत्म, कोई लेना देना नहीं, एक दृढ़ संकल्प से समाप्त, आवश्यकता जिसकी नहीं है, सुबह भी कहा था निषेध, बाबा ने मना किया है, जो सुबह नहीं थे उनके लिए ये वहां वाक्य है बाबा का, बाबा ने मना किया है, ये याद रखो। लिस्ट बना सकते किस किस चीजों के लिए मना किया है और क्यों मना किया है। बाबा बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, उसको मनुष्य का मन कैसे काम करता है पता है, क्या उसकी टेंडेंसीज है, क्या उसकी वृत्तियां है, कहां भागता है वो सब पता है। तो ऐसी ये बातें हैं।